आप विचार करो कैसा लगेगा, कैसी पीड़ा होती है भीतर में, जबकि कुछ नहीं किया हमने, क्या करो आपको कुछ नहीं करो, हमने आशीर्वाद नहीं दिया बस और का, लेकिन आप नहीं और जाकर पहले हटी पहले मुनि बने से पहले कि हमें आपको दे नहीं पड़े हम बन रहे तो ऐसे भी नहीं है कि दे नहीं पड़े आशीर्वाद, ऐसे कचू जारी पहले हटी मगर उसके बाद भी चाहिए। तो आचार्य श्री कहते कि मुनि का शिष्टाचार क्या है, श्रावक तो शिष्टाचार का पालन कर रहा, मुनि महाराज का शिष्टाचार, मुनि महाराज की विनय। आचार्य श्री ने एक बार कहा, यह सन 75 की बात है, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी ये बात भी लोगों ने पूछ ली, किसी ने कहा कि महाराज साधु का भी कोई शिष्टाचार तो होना चाहिए श्रावक के प्रति, देखो आप श्रावक का मुनि के प्रति तो है, अब मुनि का श्रावक के प्रति क्या है, तो कहते मुनि महाराज का श्रावक के प्रति यही है कि श्रावक ने उन्हें प्रणाम किया तो अभय मुद्रा और मुख पर प्रसाद, मुख पर प्रसाद, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, और हाथ से हमसे निश्चिंत रहो, हमसे आपको कोई तकलीफ न होगी, हाँ कल्याणम अस्तु, आपका कल्याण ही हमारे मन से यही निकलेगा कि कल्याणम अस्तु, आपका कल्याण, आप उपद्रव भी हमारा करो तो भी हम यही कहेंगे कल्याणम अस्तु, आपका कल्याण और मुख पर प्रसन्नता, ये हमारा शिष्टाचार है। इतने से अपने मन में प्रसन्नता आती कि नहीं आती, कषाय मंद हो जाती कि नहीं बताओ, उन्हीं तो कषाय बढ़ जाए। अब इसी तरह ये है कि कोई अपने प्रति अच्छा व्यवहार न करे तो मन में थोड़ी तो होती, पर अपने को संभालना चाहिए कि अपने व्यवहार में कमी ना आवे। आती है ये भी मैं कह रहा हूं, थोड़ी तो कमी आ जाती, 25 दफे नमोस्तु करी और कई बार बिल्कुल नहीं भैया आप नहीं आओगे, हाँ अब काय के लिए, वो तो पहचानते ही नहीं।
बता दो
हाँ
लड़का हमें नमोस्तु
करा
महाराज पिछी की आशीर्वाद दे दो,
पिछी से
तो हम भी सुनो तो आशीर्वाद है, अगर तुम्हारे ब्याह न बनो तो करवा दे, और बूढ़े करा थे महाराज नमोस्तु आशीर्वाद है, तो वही तुम्हारे ब्याह अगर हुआ है तो घर छोड़ दो, जो आशीर्वाद है।
हाँ मतलब ये कि जिसको जो चीज मिल गई है अब उनको का आशीर्वाद, जो नहीं मिली बा ले लो, आपका मतलब ये ठीक बात ये भी ठीक है। अब उनका ये आगे का प्रश्न ये है कि हमें दूसरे के द्वारा किए गए व्यवहार से दुख क्यों होता है, बहुत सहज है भैया, दूसरे के व्यवहार से अपने मन में थोड़ा क्षोभ तो होता है कषाय। आचार्य श्री का एक वाक्य जो अभी अभी प्रवचन सुन रहे थे हम, तो उसमें यही लिखा उन्होंने कि हर एक व्यक्ति को अब आज के पंचम काल में इतना तो करना ही चाहिए कि अपना और स्वयं का पुण्य हो, ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए, ऐसा वातावरण निर्मित नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे के भी असाता का बंध हो और अपने लिए भी असाता का बंध हो, जिससे अपने को साता का बंध हो और जिससे सबको साता का बंध हो, ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसा आचार्य श्री ने इस बार बहुत दिन के बाद है ये ऐसे कई बार बहुत विशेष वाक्य कह देते हैं, वो विशेष वाक्य था कि जैसे निमित्त बने बाहर से निमित्त मिलाओ और ऐसा वातावरण बनाओ जिससे कि सबको साता बंधे, और नहीं तो संकलित तो 24 घंटे तीव्र कषाय तो बनी रहती है। हम हमेशा कहते हैं इसी को दूसरी भाषा में कि ऐसा वातावरण बनाओ अपने भीतर भी बाहर भी कि जिससे कषाय मंद रहें, व्यवहार अपना ऐसा रखो जिससे कि कषाय मंद रहें, और दूसरे से तो अपन अपेक्षा तो रख सकते पर दूसरा करे नहीं करे जी उसके ऊपर निर्भर करता भैया, अपनी तरफ से जो है अपन को सावधानी रखना चाहिए। बिच्छू डंक मारे पर पानी में से निकाल वो हमारा काम है, उसको निकाल के ऊपर धरो फिर वो डंक मारेगा तो फिर छूट के नीचे गिर जाएगा, तो भैया आप ठीक है वो 100 दफे मारेगा तो हम तो 100 दफे निकालेंगे, ऐसा ऐसा भाव बहुत कठिन है, महापुरुष कर सकते हैं ऐसा, पर अपन उनमें से 1% कर लो, नहीं 100%, लेकिन इतना विचार ही अगर आ जाए कि नहीं अपन को नहीं कर तो कषाय बहुत जल्दी मंद हो जाती है ऐसा विचार आने मात्र। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज
मां कौन है,
जिसके हृदय में धर्म है या जिसने धर्म को धारण कर लिया है वो धर्मात्मा है। अब धर्मात्मा का लक्षण क्या है, ये तो सामान्य रूप से उसका स्वरूप हो गया कि जिसके हृदय में धर्म है या जिसने धर्म को धारण कर लिया है वो धर्मात्मा है। तब फिर उस धर्मात्मा की पहचान क्या है, तो लिखा हुआ है कि जिसके हृदय में धर्म है वो अपने मारने वाले को भी बचाने का ही प्रयत्न करता है। जैसे दुर्जन के साथ भी जो अच्छा व्यवहार करे वो सज्जन, इसी तरह धर्मात्मा वो है या जिसके हृदय में धर्म है वो व्यक्ति कभी भी दूसरे का अहित नहीं करेगा, अहित करने का विचार तक नहीं करेगा, वाणी और शरीर के द्वारा भी किसी का अहित नहीं करेगा और मन में भी उसके दूसरे के अहित का विचार नहीं आएगा, वास्तव में तो धर्मात्मा वो है, पर सामान्य रूप से प्रचलित क्या है, जो जितनी अधिक धर्म की क्रियाएं करता है वो धर्मात्मा है। सुबह से पूजा करता है और फिर स्वाध्याय करता है, और स्वाध्याय तो तीन तीन दफे करता हो, और फिर उसके बाद जो है रात में भोजन नहीं करता है, आलू भी नहीं खाता है, ऐसी बहुत सारी उसके नियम है तो वो, और फिर बाद में जब दुकान पर जाता है तो फिर वो कहता है कि देखो भाई धर्म तो मंदिर तक ही रखो, दुकान में तो वो दुकान में जैसा होता है वैसा करेंगे आप, दुकान में हम ऐसा थोड़ी है कि दो पैसे नहीं कमाएंगे क्या, तो थोड़ी बहुत बेईमानी भी करना पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, चोरी भी करना पड़ेगी, और मूर्छा के बिना तो परिग्रह इकट्ठा नहीं होता है, तो लिप्सा और ममत्व भी उसका उसके प्रति है, परिग्रह के प्रति, और उन सब के पीछे जो हिंसा है वो तो हो ही रही है, परिणाम अपने बिगाड़ रहा है, तो हिंसा, अपन लोग जो है परिणाम बिगाड़ने को हिंसा मानते ही नहीं है, दूसरा कोई जीव मर जावे तो हिंसा, और परिणाम बिगड़े तो हिंसा नहीं, आपने अपने परिणाम बिगाड़े दूसरे के परिणाम बिगाड़े तो इसको क्या कहेंगे, ये हिंसा तो है। तो धर्मात्मा धर्म क्रियाएं अकेले दोहरा लेने से कोई नहीं बनता है, धर्मात्मा तो वही बनता जो हृदय में अपने धर्म को धारण करता है, पर वर्तमान में प्रचलित तो यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो इन क्रियाओं को करता है वो धर्मात्मा नहीं है, वो भी धर्मात्मा है, व्यवहार से देखा जाए तो धार्मिक क्रियाएं धीरे धीरे इन धार्मिक क्रियाओं को करते करते उसके मन में और सचमुच हो सकता है कि धर्म आ जाए। मेरा कहने का आशय ये है कि कभी कभी जो है अपने मन में धर्म के प्रति उतनी रुचि नहीं भी होती है, या धर्म का जो वस्तु वास्तविक स्वरूप है वो अपने को नहीं भी मालूम होता है, फिर भी अपन बाह्य में धर्म की क्रियाएं करने लगते हैं, तो उन धार्मिक क्रियाओं के करते करते भी और कभी संभव है कि हमारे भीतर जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है वो आ जावे। तो इस तरह अपन ने समझा कि तीन तरह से वास्तव में कौन है, जो धर्म को हृदय में धारण करता है या जिसका जीवन ही धर्ममय हो गया है वो धर्मात्मा। तो वास्तव में देखा जाए तो धर्मात्मा कौन कहलाएगा, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान या पंच परमेष्ठी धर्मात्मा कहलाएंगे, और जो धर्म का आचरण कर रहा है उसको भी हम धर्मात्मा कहते हैं, और धार्मिक क्रियाएं दे रहा है उसको भी व्यवहार से हम धर्मात्मा कहते हैं। इस तरह धर्मात्मा की परिभाषा हुई भैया। क्या परिस्थितियां व्यक्ति को अच्छा बुरा बनाती हैं, ऐसा एकदम नहीं कह सकते। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, कोई भी कार्य होता है कर्म अपना फल देता है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही देता है, कैसा भी कर्म बंधा हो लेकिन जैसा द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा भाव जैसे होंगे वैसा फल देगा। असाता वेदनी कर्म का उदय चारों गतियों के जीवों को है, लेकिन वो असाता वेदनी सभी को अलग अलग फल दे रहा है, और उस गति में भी अलग अलग जो जीव हैं उनको जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला होगा वैसा भाव तो अपने आश्रित है, द्रव्य क्षेत्र काल तो जो है वो उसी को अपन परिस्थिति मानते हैं। सामान्य रूप से परिस्थिति क्या कहलाती, देश काल की सीमाएं, आप किस देश में रह रहे हैं और किस काल से गुजर रहे हैं, जैसे पंचम काल है अपन ऐसा मानते हैं, कलयुग कहलाता अच्छा नहीं है, इस समय जो है महान आत्माएं नहीं रहेंगी, उनका सानिध्य नहीं मिलेगा, अरहंत सिद्ध का सानिध्य नहीं मिलेगा अपने को, तो ये काल अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी जो है ऐसा नहीं है कि ये काल अच्छा नहीं माना जाता इसलिए हम इस काल में पाप ही पाप करें, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, धर्म करने के लिए तो फिर भी लिखा हुआ है, तो काल का उतना असर नहीं पड़ता। इसी तरह किस क्षेत्र में है, हम बंबई में है तो संभावना ज्यादा है कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं का आकर्षण ज्यादा रहेगा, और हम एक छोटी जगह है वहां हमारा भौतिक सुख सुविधा का कम साधन है तो उतने में ही हम संतोष कर लेंगे। अब ये बात अलग है कि दाम बिना निर्धन दुखी, ये भी ध्यान रखना, उसके साथ साथ कोई जरूरी नहीं है कि संपत्तिमान ही जो है सुख दुख का ज्यादा अनुभव करता हो, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी हो सकता है, संतुष्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसका आशय ये है कि हमारे परिणामों पर निर्भर करता है भैया, परिस्थितियां अगर हमारी मन स्थिति अच्छी हो तो परिस्थितियां हमें कुछ भी नहीं कर पाती, और अगर हमारी मन स्थिति ही गड़बड़ है तो कितनी अच्छी परिस्थिति हो है? मैं बैठे तो मंदिर में है और भाव अच्छी नहीं है तो मंदिर का कर ले है? ये बताओ है? इसी तरह से जो है भाव आपके अच्छे हैं और फंस गए हैं कहीं ऐसी जगह जहां की अच्छे लोग नहीं है, तब भी आपके भाव कोई बिगाड़ नहीं सकता जबरदस्ती। हमने कई बार ये चीज कही कि आप हमें गाली दे सकते हो, हमें गुस्सा तो नहीं दिला सकते, वो तो हम कराओ चाहें तो करें, नहीं करो चाहें तो नहीं करें, आप दे दो। आप इस तरह परिस्थितियां विपरीत होने पर भी हम अपनी मन स्थिति को संभाल सकते हैं, और मन स्थिति अगर अच्छी है तो एक व्यक्ति पहुंचा और उन्होंने कहा कि महाराज कोई मंत्र दे दो। अच्छा, काहे के लिए चाहिए मंत्र? तो उन्होंने कहा कि ताकि देवता लोग मेरे बस में हो जाए। अच्छा, देवताओं को बस में करने के लिए मंत्र चाहिए? कहले हाँ। तो पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नौकर तुम्हारे बस में है? कहते अरे वो तो बात ही नहीं मानता हमारी। अच्छा, तो फिर तुम्हारा जो लड़का है वो तो तुम्हारा तुम्हारे वश में होगा? अरे महाराज उसकी तो कुछ पूछो ही मत, इतना बिगड़ गया है, वो भी हमारे वश में नहीं। अरे तो भाई जिससे तुमने विवाह किया तुम्हारी जीवन साथी तो तुम्हारी बात मानती होगी, वो तो वश में होगी। कहला महाराज अब ज्यादा मेरे को आओ हमसे। तो फिर महाराज ने कहा कि देखो देखो भाई, फिर हम तुमसे पूछते, तुम्हारा मन तो तुम्हारे वश में है? तो कहते महाराज मन भी वश में नहीं है। तो कहते फिर कौन मंत्र की आवश्यकता तुम्हें नहीं? जिसका मन वश में है उसके लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं, और जिसका मन वश में नहीं है उसको मंत्र कोई लाभ नहीं देगा। जैसे वल्मीकि जी कहा करते थे, भैया चारित्रवान हो गए तो हमारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बिना आशीर्वाद के भी कल्याण कर लेगा, और चारित्रहीन हो गए तो हमारे आशीर्वाद से भी उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। राग द्वेष में अधिक हानिकारक कौन है? अधिक हानिकारक तो देश है, स्पष्ट दिखाए, क्योंकि देश के दो भेद नहीं होते, प्रशस्त और अप्रशस्त दो देश नहीं होते। राग तो प्रशस्त और अप्रशस्त होता, विषयानुराग अप्रशस्त है, छोड़ने योग्य है, बिल्कुल सर्वथा हे है, लेकिन धर्मानुराग, धर्मानुराग से तो अपने जीवन में पवित्रता आती है, और पवित्रता के चलते हमें धर्म का वास्तविक स्वरूप ध्यान में आता है। और जो पतित व्यक्ति है, जो कषायवान है, अत्यंत तीव्र कषाय कर रहा है, उसको तो धर्म की सुधी नहीं है, और जो थोड़ा मंद कषायी होगा वो धर्म की चार बात सुनेगा, हो सकता कि वस्तु स्वरूप उसको ठीक ठीक भासे तो फिर वो अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि राग में और देश में सबसे खतरनाक तो देश है, और फिर राग में भी विषयानुराग भी छोड़ने ही योग्य है, और धर्मानुराग भी, जब तक हम अपने उस आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं हुए तब तक धर्म से अनुराग रखेंगे, अपने आत्मा से अनुराग रखेंगे, फिर अपने आत्मा को ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उदाहरण तो मेरे ख्याल से यही उदाहरण आपको पर्याप्त है। किसी व्यक्ति से द्वेष रखिएगा तो बिना तीव्र कषाय के द्वेष नहीं हो सकता, ध्यान रखना, द्वेष में तीव्र कषाय होती है। राग रखेंगे आप, माँ का बेटे से प्रेम है तो कषाय तीव्र नहीं होगी, मंद कषाय रहेगी। आप खुद देख लो ना, अनुभव में अपन रोजमर्रा के धर्म, भगवान के प्रति अनुराग, आप यहां काय को बैठे हुए हैं, आप आहार देने काय को भागे चले जाते हैं, कौन सी वजह से? अनुराग की वजह से, धर्मानुराग की वजह से मेरा अपना कल्याण होगा, इस आशय से, या कि हमारे महाराज जी हैं, हमारे भगवान हैं। पहले तो यही भाव रहता हमारे तुम्हारे का, फिर बाद में धीरे धीरे जो है दृष्टि और विशुद्ध होती चली जाती है, तो मेरे आत्म कल्याण के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। तो इसलिए धर्मानुराग, जो चार प्रकार का अनुराग लिखा है, धर्मानुराग, भावानुराग, प्रेमानुराग या मित्रानुराग कहते हैं, और मध्यानुराग, पांडव आदिवत मध्यानुराग का उदाहरण दिया है, जैसे पांडवों का अनुराग था, जैसे जिसको अपन ब्लड रिलेशन बोलते हैं, वो एक सहज अनुराग है, वो जाता नहीं है। देखो नकुल और सहदेव दोनों को कितना सा विचार आ गया था, ये तो हम तो अभी यंग हैं, युवा हैं, हम तो सहन कर लेंगे उपसर्ग, लेकिन ये भाई तो हमारे सब वृद्ध हो गए हैं और ये कैसे सहन करेंगे। उतने की वजह से जो है भले उनको सर्वार सिद्धि हुई, पर उदाहरण दिया है कि ये मध्यानुराग है। अरे धर्मानुराग की वजह से तो विष्णु कुमार मुनि महाराज ने जो है अपना पद छोड़ करके और 700 मुनियों की रक्षा करी, उस धर्मानुराग की वजह से। ये धर्मानुराग कहलाता। और मित्रानुराग, मेरा मित्र है ये गलत रास्ते पर जा रहा है, मैं इसे कैसे अच्छे रास्ते पर लगाऊं, ऐसा बार बार जो विचार आता है वो कौन सा अनुराग, वो मित्रानुराग कहलाता है। अपने मित्र के आज के समय में ऐसा बहुत कठिन है, उसमें लिखा कल्याण मित्र बहुत साता वेदनी कर्म के उदय से मिलता है। राजवार्तिक में लिखा कि किसी को कल्याण मित्र मिल जाए, अर्थात निरंतर वो उसके कल्याण के का विचार करने करता रहे कि ये मेरा मित्र है, इसका कल्याण हो जाए, ऐसा तो बहुत बहुत पुण्य का उदय होगा, तो ही कल्याण मित्र मिलेगा। हाँ, तो बारीशैन और पुष्पडाल का उदाहरण महाराज ने जैसे कहा कि पुष्पडाल और बारीशैन दोनों मित्र थे, और ये तय हुआ था कि तुम दीक्षा लोगे तो हम भी दीक्षा ले लेंगे और दीक्षा ले ली, लेकिन पुष्प डाल के मन में थोड़ा सा आसक्ति घर के प्रति गृहस्थी के प्रति रही आई। 12 साल तक तो साथ में रहे, फिर बारीशरण ने जो है उनको फिर स्थितिकरण किया, ये अपन सब लोग जानते हैं, वो है मित्रानुराग। ऐसे उदाहरण जो है क्या सुख दुख का कारण अपनी अपनी दृष्टि है, वास्तव में तो यही है। कोई किसी को यहां सुखी दुखी नहीं करता है, लेकिन क्या करें, इस तनिष्ठ की कल्पना करके जीव जो है अनादिकाल से जो है किसी को इष्ट मान लेता है तो उससे सुखी होता है, किसी को अनिष्ट मान लेता है उससे दुख ले लेता है। बाकी सुख और दुख वस्तुओं में नहीं है, हमारे अपने परिणामों में है। हम चाहें तो, हमने आपको नहीं बताया था कि एक पिता अपने बेटे से परेशान था और बेटा अपने पिता से परेशान था। पिता ने जो है अपने मित्र से कहा कि हम तो बेटे से बड़े परेशान हैं, बातें नहीं मानता हमारी, हम जैसी कहें उसके उल्टे उल्टे चलता है। तो कहला भाई समझाएंगे हम, तो बेटे से मिला कि भाई पिता की बात माना करे। तो उसने कहा कि चाचा पिता की बात मानो तो दिक्कत है, नहीं मानो तो दिक्कत है। कहला क्यों, क्या हुआ? कहला वो एक बार जो है नए कपड़े बनवाए, नए कपड़े बने थे तो हमने सोचा कि अब बने हैं तो पहनने के लिए बने हैं, तो हमने पहन लिए और पहन करके दुकान पर पहुंचे। सुबह चिल्लाने लगे वो, हो हमारे राज में बने ठने घूमो, जो ये चिल्लाने तो हैं सब, हमने इतने पैसा कराया है तो तुम बने ठने घूम रहे। सुकन्या हमने सोचा कि भाई ठीक बात है, नए कपड़ा नहीं पहनेंगे अपन, मैं पटरिया में भरे थे हमने वो निकाले वे पहने। दूसरे दिन जो है पहन करके खराब कपड़ा गए, सुकन्या देखो लजाओ में, अबे हम जिंदा हैं, हमारे रेत तो अच्छे पहन लो। अब बताओ, अब अच्छे पहने थे तो कहते तो दिक्कत, खराब पहने तो दिक्कत। जिसको दुख निकालना है किसी चीज में से, वो तो कहीं ना कहीं से दुख निकाल ले, सुख में से भी दुख निकाल ले। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान है, जिससे अपना कल्याण होता है उसको कष्टप्रद मालूम पड़ता और विषय कषाय उसको सुखजनक मालूम पड़ती है। भौतिक सुख
घोड़ा के जैसे वाली घोड़ा पे जा रहे थे,
हां दो तो दोनों बैठ गए, तो उनने कही भैया इतने से तो घोड़ा तुम दो दो बैठे, सुनने की तो एक उतर जाओ। लेकिन लज्जी तो देखो भाई, लड़का नीचे चले जा रहा हूं और बाप ऊपर बैठे, शर्म नहीं आई सो वो निकल गया और वो को ऊपर बैठा दिया, लड़के को बिठा दिया। तीसरे व्यक्ति ने कही लज्जी कैसा लड़का है, पिताजी इतने बुरे हो गए, उनको पैदल चलवा रहा हो, खुद ऊपर बैठो। सो दो जनों ने सोची भैया दो ही बैठो, तो चले चलो पैदल, दो पैदल घोड़ा भी चले जा रहा। उन्होंने कहा कितने मूर्ख है, घोड़ा को घोड़ा लाओ बैठे कोई नहीं है। अब जब बैठे थे तब दिक्कत आती, नहीं बैठी तो दिक्कत। तो यही बात, ये घोड़े का उदाहरण महाराज को भी याद है। तो ये सुख दुख जो है ये जो है सही अपनी अपनी दृष्टि है, आप जैसा चाहेंगे। हाँ, क्या गुस्सा आने पर पानी पीने से गुस्सा शांत हो जाता है क्या? हाँ, वो प्रतीकात्मक है, पानी जो है वो काहे का प्रतीक है बताइए? शीतलता का। पानी का स्वभाव शीतल है, वो अगर अग्नि के संपर्क में नहीं आए तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ठीक इसी तरह से जो है अग्नि तो है एक तरह से क्रोध, तब उस समय उसको शीतलता कौन देगा? पानी देगा। और हमें इस बात का स्मरण कराया जाता है कि तुम्हारा स्वभाव तो ये नहीं है, तुम्हारा तो क्षमा भाव रखना स्वभाव है, तुम कहां इस क्रोध में पड़ गए हो। ऐसा याद उस समय आ जाओगे तो इसलिए याद दिलाते कि भैया इनको जरा गुस्सा ज्यादा आ रही है, इनको पानी पिलाओ, है ऐसा कह देते पानी पिलाओ। तो पानी पिलाना जो है वो वहां पर प्रतीकात्मक, एक तो ये हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तब भी सही है। पानी पीना जो है वो इसलिए सही है क्योंकि जिस समय हमें क्रोध आता है तो साइंस का कहना है कि हमारे अंदर जो किडनी है उसके दोनों साइड दो ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से एड्रिनलिन निकलती है। वो एड्रिनलिन जैसे ही ब्लड में मिलती है तो और ज्यादा एक्साइट होता, और ज्यादा उत्तेजित होता व्यक्ति, और उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि वो पानी पी लिया। पानी पी लिया तो वो मामला डाइल्यूट हो गया, किडनी को का फंक्शन जो है पानी के एब्जॉर्ब करने में लग गया, तो वहां से डाइवर्ट हो गया। इसलिए तो साइंस की दृष्टि से भी सही है और साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो उसमें भी देखिएगा कि पानी की तरफ ध्यान चला गया, जिस वजह से गुस्सा आ रहा था वो तो अलग हो गया, पानी पी रहे हैं अब डाइवर्ट हो गया उतनी देर के लिए आपका माइंड। और कई बार जो है साधु जी का नहीं आता कि उन्होंने कहा था कि हम भाई सोच करके बताएंगे दवाई दो चार दिन में, और दवाई क्या दी थी उनने, एक गोली दे दी थी पुड़िया में रख करके, और कहने लगे को जब गुस्सा आवे तो जमे ने खा लिए गुटकी ने भरे रही हो बस, तो वो रखे रहता था, जब गुस्सा आती थी रख लिया, गुटक भी नहीं सकते और भूख भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे, बोल तो सकती नहीं गुस्सा, चुपचाप उसको रखें उसमें। ये एक उपाय था कि आप जो है किसी भी तरह से देखो, कषायों को मंद करने के उपाय हैं। कषायें तो अपने उदय और देश काल की स्थिति पाकर के उदय में आती हैं, अपना फल देती हैं। हमारी अपनी जिसको कहते हैं हमारा जतन ये है, हमारा यत्न ये होना चाहिए कि उस कषाय के उद्वेग को हम कमती कर सकें। दूसरे के अंदर आया हो चाहे स्वयं के अंदर आया हो, उसको हमें कम करने का उपाय करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है और अधिक जैसे आग में ईंधन डालते हैं, ऐसे जो है दूसरे को तो कषाय हो रही है, हम उस कषाय को और बढ़ावा दे देते हैं और स्वयं को भी। नहीं भैया, सम्यक दृष्टि का एक अंग आता है स्थितिकरण, तो हम लोग सोचते हैं कि कोई दर्शन से ज्ञान से चारित्र से भ्रष्ट हो रहा है, उसको बचाना है, उसको संभालना है। ऐसा नहीं है, उसमें लिखा है कि सुबह मैंने संकल्प किया था कि आज दिन भर क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन अचानक मैं क्रोध में गिर गया। जैसे कोई आदमी फिसल के गिर जाता है, ऐसी तो कषाय में गिर जाना ही तो है अपने स्वभाव से विचलित होकर। तो अगर मैं अपने क्रोध में चला गया हूं तो वापिस लाओ, भटक गया हूं मैं, उस भटके हुए को पुनः जो है स्थित करना अपने आप में, वो तो कहलाता है स्थितिकरण। तो दूसरे के अंदर भी इस तरह कषाय भाव आ जाए या अपने स्वयं के अंदर कषाय भाव आ जाए तो उसको पुनः अपने स्वभाव में स्थित कर देना, ये अपन को अभ्यास करना चाहिए। बिना अभ्यास के ये चीज नहीं आती। हमने आपको दो तीन उदाहरण नहीं सुनाए थे कि जब उनका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का उनके पिताजी जो है बड़े विनोदी किस्म के थे, सुबह सुबह जो है एक व्यक्ति उनके पास आ गया और बिल्कुल लड़ने के मूड में था वो, तो अब चाय का समय था और ये तो बिल्कुल 17 बातें सुना रहा है। तो धीरे से उन्होंने कहा कि लो चलो होते बहू के कुआं पे। कहने क्या मतलब, क्या है वहां पर बहू के कुआं पे? कहने वहां पर अखाड़ा है और तुम्हारी जोड़ का कोई मिल जाएगा तो तुम्हारी हम जोड़ बिठवा देंगे वहां पर। अब कहने हम तो कमजोर हैं, हमसे तो बनेगा नहीं लड़ते, और तुम आए हो लड़ने के लिए, अभी तुम्हारा मन लड़ने का है तो जोड़ तो बिठवाएंगे थे। अब ऐसा कहते ही साथ जो है उसकी सब गुस्सा वुस्सा खत्म हो गई। और ये ऐसे एक और हमने सुनाया था आपको कि घर में जो है बहुत तेजी आ गई, जो उनकी जीवन साथी थी बैठी थी बहुत देर से इंतजार करते हुए कि अब आएंगे खाने पे, अब आएंगे खाने पर। जब खाने पे आए तो उन्होंने ऐसे गुस्सा में थाली खिसका दी। अब उन्होंने देखा कि ऐसे गुस्सा में खाना खाने से क्या मतलब, सुनने थोड़ी देर तो देखी, फिर थाली उठा के उनके माथे पर लगा ली। तो वो कहने क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो देखा यहाँ गर्म होगी क्या कपाल पे? तो कहने हाँ अभी तो मैं गर्मी बहुत है तो थोड़ी देर गर्म हो जाएगी। अब लो ऐसा कहने से जो है गुस्सा अपने आप शांत हो गया। मैंने उसको डाइवर्ट करना, गुस्सा आने पर पानी पीना एक प्रतीकात्मक है। और भी जो भी उपाय बने जैसे बने, कहते कि अनदेखा करना अनसुना करना। भैया गुस्से के निमित्त आने पर उनको अनदेखा कर दो, हमने देखे नहीं, अनसुना कर दिया, हमने सुना ही नहीं कि आपने क्या कहा। जिस हमें मालूम है कि जिस बात से हमको अभी कषाय आएगी उस बात को सुनने ही नहीं, व्यर्थ में क्यों अपना मन खराब करें और दूसरे का भी। और कर्म बंद आगे तक के लिए कषायों के साथ ये है कि जब ये अज्ञानता के साथ कषायें अपना काम करती हैं तब जीव जो है निरंतर कर्म बंद को ही करता रहता, उस प्रक्रिया से जरा भी उपरत नहीं हो पाता, बच नहीं पाता। इसलिए कर्म बंद से बचना चाहिए भैया। ऐसा क्यों होता है कि जब कभी हमारे मन में किसी कार्य के प्रति विकृति होती है, मतलब मन नहीं होता या अच्छा सोच नहीं होता, अभिप्राय अच्छा नहीं होता, तो हमारा मन बार बार उस ओर क्यों जाता है? एक चोर भी अगर चोरी करता होगा तो शुरू शुरू में तो उसको बहुत घबराहट होती होगी। वो जो एक अंतरात्मा हमारे भीतर बैठा रहता है जो एकदम पवित्र है, वो हमें इन बुराइयों से बचाने के लिए प्रयास तो करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम बुराइयों के इतने आदि हो जाते हैं कि फिर अंतरात्मा की आवाज सुनना पसंद नहीं करते। आवाज तो आती है एक क्षण को, जब भी हम कोई कार्य करेंगे और बुरे अभिप्राय से करेंगे। अच्छा कार्य भी बुरे अभिप्राय से किया जाता भैया, बुरा कार्य तो बुरे अभिप्राय से होता ही है, लेकिन अच्छा कार्य भी बुरे अभिप्राय से हो सकता है। जैसे हम सत्य बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य बोलने से पहले विचार तो कर लें कि सत्य के द्वारा किसी का मरण तो नहीं हो जाएगा। या मेरे अभिप्राय में ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको चोर साबित करके अपने को साहूकार साबित करना चाह रहा हूं। ऐसे खोटे अभिप्राय से अगर आप सत्य बोलेंगे तब भी वो झूठ कहलाएगा, क्योंकि सत्यमपि विपदे, दूसरे पर आने वाली विपत्ति अगर उस सत्य से संभव है तो वैसा सत्य भी जो है नहीं बोलना चाहिए। माने ऐसे अच्छे काम भी जो है खोटे अभिप्राय से करने का निषेध किया हुआ है। पर सवाल यह है कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते हैं, बार बार मन वहीं चला जाएगा। माने जिस चीज का निषेध होगा, साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि नेगेशन में अट्रैक्शन होता है, जितना जिस चीज का निषेध करेंगे ये नहीं करना, अगर बेटे से कहेंगे कि देखो ये नहीं करना, वो कहेगा तुम जाओ तो फिर दो के बाद तो हम तुम्हारे सामने नहीं कर, फिर उसके बाद उसको फोरनगा भाई, जिस चीज के लिए मना किया होगा उसको जरूर करने का बड़े व्यक्ति का भी मन होगा। ऐसी बहुत सी कहानी आती है ना कि वो एक महल में चले गया राजकुमार, तो वहां पर फिर आवाज आई कि आप उत्तर में घूमना चाहें तो उत्तर दिशा में चले जाएं, पश्चिम में घूमना चाहें तो पश्चिम में, पूर्व में, लेकिन भूल करके कभी दक्षिण दिशा में नहीं जाना, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो वो दक्षिण दिशा में ही घूमने के लिए जाएंगे, फिर फंस गए, फिर उनकी बहुत बड़ी कहानी चलती बच्चों की इस तरह की। वो क्या है, वो यही है कि हम जो है जिस चीज का निषेध जितना अधिक होगा, हमारे यहां पर इसीलिए अपन लोग समझ नहीं पाते हैं संसार के निषेध का मायना क्या है। संसार से घृणा करने का नहीं है, किसी भी चीज से द्वेष नहीं सिखाया, राग का मना किया है इसका मतलब द्वेष करने लगे, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीजों से परे होना, राग द्वेष से वितरागता वो कहलाएगी। तो अपने यहां पर इस दृष्टि से अगर अपन देखें तो किसी भी चीज का अपन निषेध करेंगे या उससे घृणा करेंगे तो एक दूसरे तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वो भी संसार बढ़ाने वाली प्रक्रिया, उस चीज के प्रति तटस्थ रह जाना। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, ऐसा लिखते हैं कि जो हमारे विरुद्ध चल रहे हैं, जो बात नहीं मान रहे हैं आगम की गुरुओं की, तो फिर उनको क्या करना, उनके प्रति ना राग करना, ना द्वेष, ना उनकी निंदा, ना प्रशंसा। लेकिन अपन क्या करने लगते हैं, प्रशंसा नहीं करेंगे तो निंदा तो जरूर से करने लगेंगे, कहते नहीं उससे भी तो निंदा करने से भी तो हमारा ही अहित होने वाला, तो तटस्थ हो जाना चाहिए। ऐसे अगर हमारे मन में किसी कार्य के प्रति विकारी भाव है, अच्छा भाव नहीं है अभिप्राय में, तो उस कार्य को जो है स्थगित कर देना चाहिए कि भाई जब अच्छा मन बनेगा तब करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे धर्म कार्य है, मंदिर आना है, लेकिन मंदिर आने में भाव ही नहीं बनते हैं, मन ही अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या करें, मंदिर नहीं जाएं क्या, कहते तो जरूर जाना। अच्छे कार्य करने के लिए अगर मन ना बने तो बेमन से भी अच्छे कार्य कर लेना, ये भी चल जाएगा, लेकिन बुरे कार्य करने का मन भी बन जाए बढ़िया तब भी नहीं करना, ऐसा दिया हुआ। क्योंकि संस्कार ऐसा है कि अच्छे कार्य करने का तो मन होता ही नहीं क्योंकि अभ्यास ही नहीं, और बुरे कार्य करने का तो बहुत अभ्यास है, बिना मन के भी अगर मन में नहीं भी है तब भी अपन कर लेते हैं। भाई मेरे ख्याल से आपके प्रश्न को मैं ठीक ठीक समझ पा रहा हूं कि हमारा मन हमेशा बुरी चीजों की तरफ ही जाता है, फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें जो है तटस्थ रहने का अभ्यास करना चाहिए। हमने एक बार कहा था कि वैसे अपन रोज जो है अपनी जीभ से अपने दांत नहीं गिनते कि ये दांत ठीक लगा है कि नहीं लगा, ये खराब तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन एक आध दांत टूट जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं वहीं चली जाएगी। अभी कुछ फंस जाए उसमें दांत में तो अपन कितने भी करें कि दूसरी तरफ ध्यान चला जाए, लेकिन वो जीव उस फंसे हुए को निकालने की कोशिश करती रहेगी, जहां जहां थोड़ी बहुत इस तरह की चीज। तो ऐसे ये है कि जो अपने मन में द्वेष भाव है उस तरफ मन चला ही जाता, जो विकृतियां हैं उनकी तरफ मन चला ही जाता। पहसान सा मन सदा मल खोज लाता, आचार्य श्री ने लिखा एक पद का अनुवाद करते हुए, उसकी पहले की लाइन तो नहीं याद आ रही मुझे, उसमें यही है कि इस मन को कितने भी बढ़िया बढ़िया स्वाध्याय करवाओ, कितने भी बढ़िया बढ़िया सत्संग में बिठा लो इस मन को, लेकिन मन की टेब तो ऐसी है जैसे कि स्वान की है, जैसे कुत्ते का है कि कितने बढ़िया बढ़िया मिठाई खिला दो लेकिन वो नाली में पानी पीने मल खाने जाएगा ही। ऐसा ही मन है, कितने बढ़िया चीजों में लगाए रखो, जरा ऐसा अवसर मिल गया और वो खराबी में चले जाएगा, उसका वैसा है ही। इसलिए इस मन रूपी उसको बंदर को लिखा है कि हमेशा श्रुत रूपी वृक्ष पर चढ़ाए रखो ताकि वो उसी में रमा रहे। इस तरह अपन इन चीजों से बच सकते हैं, बचने का उपाय यही है कि उसको कहीं ना कहीं एंगेज रखा जाए अच्छी चीज में। आज का मानव उठते हुए को गिराना चाहता है, तो गिरते हुए को उठाना क्यों नहीं चाहता? दोनों चीजें एक साथ होती हैं। जब हम दूसरे को गिराने का भाव रखते हैं तो कभी हमारे मन में दूसरे को उठाने का भाव आएगा ही नहीं। ये ध्यान रखना, अगर हम उठा भी रहे होंगे तो मालूम काय के लिए? कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। हम अगर कुछ बना रहे होंगे तो वो भी मिटाने के लिए। ऐसा अक्सर होता, हमने कॉलेज टाइम में देखा कि जैसे दो कॉम्पिटिटर हैं, दोनों के बीच में एक दो नंबर का होता है फर्क, और दोनों अच्छी खासी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अब एक दूसरे को वो किताब विताब कोई बढ़िया मिल जाएगी तो एक दूसरे को नहीं देंगे, वो कोई नोट्स मिल जाएंगे तो नहीं देंगे, कोई बढ़िया बात होगी तो नहीं बताएंगे। क्यों? एक दो नंबर का तो मामला है। अगर जल्दी सा हो गए तो ये भी बढ़ जाएगा और मैं अच्छा, लेकिन अपने से जो थर्ड या फोर्थ फिफ्थ नंबर आ रहा है उसको सब किताबें उतारे दे देंगे है? क्यों दे देंगे? उससे अपना कोई ज्यादा खतरा ही नहीं है। जिससे खतरा होता है उसके प्रति अपने मन में यही चीज है। हम दूसरे को, अब देखना, जिसका कोई रैंक हमारे यहां पर था एक स्टूडेंट, तो वो हम तीन चार लोगों की बहुत कश्मकश चलती थी, एक दो नंबर, दो दो चार नंबर के। एक सेमेस्टर में उनका सेकंड रैंक आ गया तो अपन का थर्ड हो गया, फिर अगले में अपन ने दम लगाया तो अपना आ गया सेकंड, उनका थर्ड हो गया, ऐसे करके। तो वो जो एक फिफ्थ और सिक्स नंबर पर था वो मित्र जो है अपनी किताबें अपने नोट्स उसको तो देता था। मैं कभी कहूं या मेरे से वो कहे कि तू दे दे तो मैं उसको नहीं देता था, मैं वो दे रहा हूं। ये क्या चीज है? ये है, हम अगर दूसरे को दे भी रहे हैं, हम सोचते थे कि उस मित्र को दे रहे हैं जिसका बिल्कुल कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई में वो नहीं है, उसको उठा रहे हैं आप, उसको उठा रहे हैं काय के लिए? इस दूसरे को गिराने के। देखना मजा, दूसरे को गिराने के लिए भी हम जो हमेशा सेकंड आता है उसको गिराने के लिए और थर्ड वाले को सेकंड लाने के लिए, अगर आपने थर्ड वाले की मदद कर दी तो काहे के लिए कि आपने थर्ड की मदद? ताकि ये सेकंड आ जाए और जो सेकंड है वो मेरा मित्र नहीं है, वो अपने आप थर्ड हो जाएगा। ऐसा भी होता है, ये दोनों चीज एक साथ चलती है। आज मनुष्य जो है उठते हुए को गिराना चाहता है पर गिरे हुए को कभी उठाने की कोशिश, जो गिरे हुए को उठाएगा वो किसी को गिराएगा क्यों बताइए? और जिसने गिराया है वो उठाएगा काय को? और उठाएगा भी अगर तो उसका इंटेंशन वही होगा कि किसी और को गिराना है। इसलिए जो है ये बहुत मानवीय जीवन मूल्यों की कमी हो जाना इसका कारण है। हमारे अंदर जो नैतिक मूल्य हैं या मानवीय जीवन मूल्य कहलाते हैं वो हमारे भीतर कम हो गए। असल में इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि हमारे चेतना में उतनी निर्मलता है ही नहीं। ये चेतना की निर्मलता से ही ऐसा होता है कि हम दूसरे को भी, क्योंकि हम उस समय ध्यान कर लेते हैं कि कभी हम गिर जाएंगे तब भी तो कौन उठाएगा, अगर हम किसी को नहीं उठाएंगे तो कौन हमारी मदद करेगा, हम अगर किसी की मदद नहीं करेंगे, इतना भी अगर स्वार्थ आ जावे तो भी काम चल जाएगा। और वैसे तो होना ये चाहिए कि नहीं, अगर कोई गिरता है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे उठाऊं। मैंने एक बार नहीं सुनाया था कि तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानूं। बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और डराना, अरे बेबस को क्या और गिराना, उसे उठाओ तो मैं जानूं। तन का क्या श्रृंगार सजाना मन श्रृंगारो, ऐसा किसी ने लिखा हुआ था कि जो अपने आप ही गिर रहा है, जो अपने आप ही पतित हो रहा है, आप उसको और कहे को धक्का दे रहे हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको उठाएं। एक घटना अभी हमने शायद पहले सुनाई थी कि एक ग्वाल उसके गड़ैये की का मेमना, वो भेड़ का, वो गुम गया, नहीं लौटा वो जंगल से, सब तो आए गए, वो एक छोटा सा नहीं लौटा। अब ये थोड़ा परेशान, रात हो गई, अब आता होगा। फिर रात को लालटेन लेकर के जंगल में ढूंढने के लिए गया। लोग कहने लगे कि काय को परेशान हो रहे हो, आ जाएगा अपने आप। नहीं, ढूंढ के लाएंगे, भटक गया है। तो गया वहां पर, देखा तो एक पेड़ के नीचे और आवाज करता हुआ बहुत दुखी और खड़ा हुआ था अकेला, उसको सूझ ही नहीं रहा था कहां जाए। तो लालटेन क्या देख करके और वो मालिक के पास आ गया और उसको क्या चाहता, वो तो कान पकड़ के खींचते हुए ले आता, लेकिन उसको अपने कंधे पर बिठा करके ले आया। तो घर के लोग कहने लगे कि एक तो तुम्हें इतना परेशान किया, दो घंटे से तुम परेशान हो रहे, इसको खोज के लाए, इसको तो लगाना चाहिए था और खींच के ले आना चाहिए था, ऐसे तुम तो इस पर बिठा के लाए। तो क्या कहता, वो जवाब देता कि जो भटक गया है उसे ही तो संभालना पड़ेगा, उसे ही तो सही रास्ता देना पड़ेगा। जो पहले ही से दुखी है, जो पहले ही से गिरा हुआ है संसार में, यहां पर अगर अपन गौर से देखें तो कोई यहां पर उठा हुआ नहीं है, सब पतित ही हैं। पतित नहीं होते, पावन होते तो भगवान नहीं हो गए होते। कोई थोड़ा कमती है, कोई थोड़ा ज्यादा है, तो हमें तो एक दूसरे के उठाने की मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा हमारा भाव बन जाए, और देखो मजा ये है कि दूसरे को उठाने से कोई उठे या ना उठे, अपन तो अपने निर्मलता में उठ ही जाते हैं। दूसरे को गिराने से कोई गिरता नहीं है, ये ध्यान रखना। कई जगह बुंदेलखंड में आता है ना कि कौआ कोसे तो ढोर थोड़ी मरते हैं, ऐसा कहावत होती कि किसी के बुरा सोचने से किसी का बुरा होने लगता। भैया तो ऐसा तो बहुत आसान था फिर तो, लेकिन क्या करें, किसी के बुरा सोचने से उसका बुरा नहीं होता, पर हमारा स्वयं का तो बुरा होने लगता। इसलिए किसी के बारे में अच्छा ही सोचें, उसको उठाने की कोशिश करें, ऐसा अपना स्वभाव बना लें। अभ्यास नहीं है अपना। हमने गांधी जी का भी एक उदाहरण सुनाया था, हैं कि देखो उनकी जो नातिन थी वो उनकी सेवा में रहा करती थी, मनु। तो उन्होंने एक बार जब वो उनको पट्टी लगा रही थी मिट्टी की, तो देखा उन्होंने कि दो तीन मजदूर और खाने की छुट्टी हो गई है, तो खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? तो रूखी सूखी रोटियां थी, नमक के साथ खा रहे थे। उन्होंने कहा, मनु बेटे देखो अपने तो आश्रम में बहुत छांच रहता है, इनको ऐसे ही दे दिया करे, वो गला के खा लेंगे। उन्होंने कहा, हाँ दे देंगे बापू। तीन चार दिन के बाद फिर बापू ने देखा तो वो फिर वैसे ही रोटियां खा रहे थे। क्या मनु तुमने उनको छांच नहीं दिया? अरे बापू हम तो भूल ही गए। तो बापू क्या बोले दुखी होकर के, हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, हमने बचपन से तुम्हें किसी की मदद करने का संस्कार ही नहीं डाला, इसलिए तो तुम भूल गए। हमारी पट्टी कब रखनी है, कहाँ अल्पिन रखी है, कैसे रखनी है, तुम्हें सब याद है, लेकिन ये नहीं याद रहा कि हमें उसे देना था कुछ। अपन लोग कहाँ सिखाते बच्चों को? अपन बच्चों को धक्का देना तो सिखाएंगे जानवर को, लेकिन जानवर को पुचकार करके और उसको कुछ खाने पीने की चीज देना कभी नहीं सिखाते। जाओ भगा के आओ, गाय आ गई ये नहीं कहेंगे अपन कि जाओ उसको एक रोटी पिटाल के आओ, गाय आ गई। नहीं, भगा के आओ, गाय आ गई, वो अपना काम ना कर देगा कुछ। जाओ भगा के आओ, वो सब कौए भी आ गए वहां पर। ये क्या चीज है? अपन खुद तिरस्कार करना सिखाते हैं भैया, अपने अहंकार बस। और एक व्यक्ति थे, उनका अनाज जो है सबसे ज्यादा आता था उनके खेत में, बताओ, और बाकी लोगों का अपने आप कमती आता था, जबकि मामला देखने में बिल्कुल उल्टा था। बाकी सब लोग जो है वो कोई डरवाने के लिए पुतला बना के टांगते थे खेत में, और हाँकने के लिए आदमी लगाते थे पक्षी उड़ाने के लिए, लेकिन उनके खेत में वो कभी भी, बल्कि उल्टा करते थे। एक वो बना देते थे मचान जैसा, उसके ऊपर पानी का भरा हुआ वो रख देते थे कि पक्षी आएंगे तो पक्षी पानी पिएंगे, और ये तो लगा हुआ है इतना उनका जो, वो कहते थे कि उन वो तो कमाते नहीं है, वो तो खेती करते नहीं है, तो उनका भी इसमें से भाग है, उनको अपना खा लेने दो, कितना खाएंगे वो, ऐसा कहते थे। जितने पक्षी आ जाते थे उनके खेत में सब खा लेते। इसके बाद भी उनका अनाज बहुत बहुत होता था, बाजू वाले से भी ज्यादा। ये क्या चीज है? आज के समय में इस चीज पर सहसा विश्वास नहीं होगा। खुरई में वो कहते कि दवाई नहीं छिड़कूंगा चाहे पूरी फसल नष्ट हो जाए, लेकिन उनकी फसल में कभी कीड़ा नहीं लगता, बाजू वाले की में लगा है। अब बताओ आप, इसी वो का बाउंड्री खींची, वो मेयर खींची, विश्वास नहीं होता था, हमको भी नहीं होता था। गरीब हमको 50 लोगों ने कहा कि नहीं महाराज जी तो सही सही घटना है, अकेली मेयर के उस तरफ ही तो कीड़ा लग गया, मेयर के इस तरफ कीड़ा नहीं लगा, उसको तो मालूम है कि इनके खेत में नहीं लगना चाहिए। लेकिन किस पुण्य और पाप का तो खेल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता हो। इसलिए ये चीज अपन को ध्यान में रखना चाहिए, संस्कार जो है प्रबल होंगे तो ही ये चीज हो सकती है। आप अपने कॉलेज लाइफ की कोई घटना सुनाने की कृपा करें, हम लोगों को आदर्श स्थापित। अब बहुत कोई मतलब नहीं, दिन लद गए वो सब, अब 25 साल हो गए। अब 25 साल में तो कहां से कहां, आज तो वो छोटे छोटे बच्चे अपन के कान काटते हैं उनको, वो इतने हाई फाई, उनकी नॉलेज वॉलेज इतनी है, दुनिया भर की बातें सीख गए हैं वो छोटे छोटे, उम्र भले ही छोटे है लेकिन कितनी दुनिया की बातें उनको आती हैं। अब वो उस समय में तो इतना था ही नहीं, अपने को 11th में ये नहीं मालूम था कि कौन कौन सी लाइन लेना पड़ती है, 11th करने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, जो कह देंगे बड़े लोग घर के ये पढ़ना है तो ये पढ़ लेंगे। अब तो जो है सब चीजें पहले से उनको पिताजी से ज्यादा मालूम कि क्या क्या पढ़ना है, वो उनको बता देंगे पिताजी को कि ये पढ़ेंगे हम और इसमें हमारा एडमिशन करवा दो आप। उस समय जो है गुरुजनों के प्रति, बड़े जनों के प्रति आदर की भावना सहज ही हुआ करती थी, आज वो चीज नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं हमको, एक घटना हमने शायद पहले सुनाई या नहीं सुनाई, क्या हुआ था कि हम लोग चार पांच लोगों का एक ग्रुप था, तो वो हम लोग फर्स्ट फाइव में जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी तो उसमें आते थे, तो थोड़ा सबका ध्यान चला जाता है कि इनको स्कॉलरशिप मिलती है और ये पढ़ने वाले लोग हैं, और हम लोगों की ग्रुप भी वैसे ही बन गया था सब पांच लोगों का, उसमें से एक चला गया था अजय पाल सिंह, वो दिल्ली में उसका कहीं किसी आईआईटी में हो गया था तो वो छोड़ के चला गया था एक सेमेस्टर के बाद, तो हम लोग चार लोग बचे। अब जब क्या होता कि डिपार्टमेंट के भीतर जो है, आप कभी जाएं यूनिवर्सिटी तो वहां देखेंगे कि डिपार्टमेंट के भीतर तो कोई चर्चा करने का था ही नहीं, इतना अनुशासन था, उसके बाहर भी बहुत बड़ा स्पेस पड़ा है जिसमें गार्डन है, उसके बाद फिर बाउंड्री, फिर बाउंड्री वॉल के बाहर एक और बैठने के लायक जगह, फिर रोड, इस तरह से। तो बाउंड्री वॉल के बाहर बैठा करते थे, कोई फ्री पीरियड था तो बाउंड्री वॉल के बाहर जाकर के हम लोग बैठे हुए थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब खाली है तो क्या करना। उसी समय क्या हुआ कि डिपार्टमेंट नवाला सबसे पहले, और जो बसेज आती थी सिटी बस वो वहीं आके रुकती थी, तो बहनों की बस आई वहां पर और वो रुकी, सब बहनें उतर उतर के उसमें से अपने डिपार्टमेंट में जाने लगी, कोई कहीं कोई कहीं। अब हम लोग आराम से अपने मशगूल थे चर्चा में, लेकिन हमारे साहब ने ऊपर थर्ड फ्लोर से और देख लिया कि हमारे स्टूडेंट और वो चूंकि बहनों की बस आई है इसलिए शायद इसके लिए ये बाहर चले गए। अब भैया ठीक है, उनके मन में आ गई, उन्होंने कहा बुलाओ सतनारायण साहब, वो प्यून था, वो हम लोगों को बुलाने आया कि साहब बुला रहे हैं आपको। हमने कहा वाह साहब बुलाए, ऐसा तो होते नहीं, हेड साहब बुलाए अपने को तो मजा आ गई, कोई कोई ना कोई बात होगी बढ़िया, और कुछ होना होगा, ऐसे सोच करके और बड़े खुश खुश और ऊपर गए और जहां कमरे में उनके पहुंचे और फिर उनने जो शुरू किया डांटना। अब हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाए, कोई क्लैरिफिकेशन दें कि हम ऐसा नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, साहब फ्री पीरियड था, कुछ भी वो सुनने तैयार नहीं थे। आधे घंटे तक जो लेक्चर दिया उन्होंने अच्छा खासा, अपने को तो पूरा याद भी नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं वो, फिर देखना इंग्लिश वाला आदमी अगर डांटेगा बाद में बहुत अति हो जाएगा तो हिंदी में बोलेगा, और हिंदी वाला अगर डांटेगा कभी बहुत जोर से तो गेट आउट बोलेगा इंग्लिश में, है ना एकदम। वो होता ही एक, तो उनको बहुत बहुत आखिरी में जो सेंटेंस था वो मुझे जो कहते हैं याद है उनका, टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने कहा था कि तुम अपना एमटेक कंप्लीट कर लेगा तब फिर जो है ना ये सब लोग और गाड़ी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा, अभी तुम इनके पीछे घूम रहा है, गेट आउट। डांट के आखिरी में जो यही कहा कि तुम इनके पीछे, अरे ये सब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे, माता पिता ने तुम्हें यहां पढ़ने के लिए भेजा है कि तफरी करने के लिए भेजा है यहां अपने उसके लिए, अगर तुम अपनी पूरी पढ़ाई कर लोगे तो ये सब तुम्हारे पीछे और गाड़ी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, तुम अभी इनके पीछे भाग रहे। उस दिन के बाद से जो है हम लोगों को थोड़ा सा दुख तो हुआ पर बाद में इस बात का सुख भी हुआ कि कोई है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। आज किसी को अगर कोई टीचर कह दे तो तमंचा लेके आ जाएगा, वो तमंचा आपकी भाषा में रिवॉल्वर है उसको अपन तमंचा ही कहते हैं, वो लेके आ जाएगा साहब को मारने के लिए आ जाएगा कि हमारे हमसे ऐसा बोल रहे हैं। उस समय जो है इतना कहने से हम लोग खुश हुए थे कि चलो कम से कम अब हमको अपनी पढ़ाई में ही लगना है। उनको बाद में फिर जब क्लियर हुआ कि नहीं ये लड़के लोग ऐसा नहीं कर रहे थे तो उन्होंने ठीक है फिर उसके बाद तो बोले, प्रसन्नता व्यक्त की कि ठीक है, पर उस समय जो उनके मन में चीज आई थी वो कितनी बड़ी चीज। ऐसे ऐसे कई मौके आए जबकि टीचर्स ने हम लोगों को, और एक को तो बाद में कहना पड़ा, अभी मैं अपने वो आते हैं यहीं पर आपके यहां तो तीन चार पांच आ चुके, किसी को मालूम नहीं, जिनने छह साल एमटेक में मुझे पढ़ाया वी के नायक, तो मैं उनसे कह रहा था कि जो एक रोड़े साहब थे वो बहुत यंग थे, 30-32 साल के थे, बहुत ब्रिलियंट प्रोफेसर थे वो, तो डरते डरते नहीं थे किसी से। वो कैंप लेके गए थे, 25 दिन का टूर था, तो उसके बाद 25वें दिन उन्होंने जो है, नहीं तो वो कभी किसी स्टूडेंट से बोलते नहीं ना किसी की तारीफ करते, हम लोगों को जो है लास्ट में जब लौटने लगे तो उन्होंने कहा कि हम लोगों से कहा कि तुम लोगों का ये कैसा बैच है, तो हम लोगों ने कहा कुछ गलती हो गई, अब तो सेशनल में गड़बड़ हो जाएगी, कैसा बैच है कह रहे हैं, और वो कहना ये चाह रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि तुम लोगों का कैसा बैच है, तुम लोगों ने जरा भी गड़बड़ नहीं करी, जरा भी उधम नहीं करा, जरा भी गर्दी नहीं करी, यहां 25 दिन रहे,
ऐसा उल्टा जो है इस बात पर से डांट पड़ रही थी कि तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी नहीं किया यहां पर, बस ऐसे पढ़ते रहे बस और कुछ भी नहीं। अब ये इंप्रेशन आज भी जो है वो पूरे के पूरे 18 लोगों के ग्रुप को मुझे खुशी होती है सुन करके कि जब आज 25 साल पुराने प्रोफेसर्स वगैरह जब ये चर्चा करते हैं कि एक बैच आया था उस बैच में से इस तरह के सब स्टूडेंट्स थे, सब अपने सब बड़े बड़े उसमें जगह पर हैं, वो क्यों है? सवाल ये है, सवाल इसलिए है क्योंकि टीचर्स ने पूरी उनने देख लिया कि ये बच्चे जो है वो बात मानेंगे। जब हम लोगों ने बिनी का ये वीके नायक और जब कैंप से लौट कर आए तो मेमोरी के लिए क्या करें इनके लिए, तो इनका फोटो हम लोगों के साथ ग्रुप फोटो था वो भेंट किया और भेंट करके गुरु पूर्णिमा थी उस दिन तो पैर छूने के लिए मैं सबसे पहले आगे बढ़ के उनके पैर छूने लगा, बाकी सबने फॉलो किया, सब लोगों ने पैर छुए, कोई की हैबिट में तो रहता नहीं, तो मालूम उनके आंख में आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों से किसने कहा ऐसा करने के लिए, तुम लोगों ने कहा हम लोग अपनी शिक्षा से ही, तो बोले कि हमने कहा साहब और ये नहीं सोचना आप कि हम आपसे ज्यादा नंबर पाने के लिए आपकी इस तरह वो कर रहे हैं कि आप हमें ज्यादा नंबर दे दें, हमको जितने मिलना उतने ही देना आप, पर हमारा फर्ज है इसलिए पैर छुए। तो उन्होंने बाद में कहा कि हमारे बेटे ने आज तक हमारे पैर नहीं छुए और तुम लोग तो हमारे स्टूडेंट हो फिर भी पैर छुए। अब ये चीजें आज कोई मायने नहीं रखती, इन चीजों को अपन आदर्श मानते नहीं, अपन तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नंबर खूब आ गए इतने ही बहुत है, इतने नहीं, उनका प्रेम आप जिंदगी भर पाते रहेंगे अगर आपने उनके गुरुजनों के प्रति विनय की है। तो ऐसे तो बहुत सारे संस्मरण आपको, मुझे आज भी वो वाली लाइफ मैं बड़े आराम से सुनाता हूं और उन लोगों के साथ स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उनके साथ आज भी उतना ही मजा लेता हूं, मुझे वो लगता है कि नहीं वो भी एक जीवन, और अगर ऐसा जीवन हो तो उसमें भी कहीं कोई धर्म ध्यान वहां पर भी है, कोई किसी का को कष्ट नहीं पहुंचा रहा है किसी को। हम एक बार बॉटनी गार्डन में चले गए, वहां पर एक बॉटनी गार्डन यूनिवर्सिटी में, तो उस बॉटनी गार्डन में चले गए तो हम जब बाहर निकले तो और दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यू आर इन बॉटनी गार्डन, मैंने कहा क्यों, तो बोलते यार हमको विश्वास नहीं हो रहा कि तुम बॉटनी गार्डन में से आ रहे, मैंने कहा मैं देखने गया था यार पहली बार, बोले अब मत जाना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता, क्यों, बोले वहां तो सिवाय पेयर बनने के और कुछ नहीं होता, वहां तो सब यही चलता रहता, बॉटनी गार्डन मतलब फेमस है कि वहां पर जिसको मैंने संबंध बनाना है इस तरह के वो वैसे संबंध के लिए जाता बॉटनी गार्डन, इतना इतना स्टूडेंट्स के बीच में इतना वॉच करते एक दूसरे को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, मुझे आश्चर्य होता, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी नहीं घूमी अपने पूरे टाइम में, ऑफिस जाना है ऑफिस का काम है वो भी ज्यादा हुआ तो बड़े भाई ने कर दिया, अपने को ज्यादा हुआ तो उसके डिपार्टमेंट के बाजू में ही बैंक था तो उसका काम रहता था बस, और डिपार्टमेंट खत्म, पूरे डिपार्टमेंट ही नहीं घूमे, पूरी यूनिवर्सिटी नहीं घूमी, 2 किलोमीटर में कौन घूमने जाए, इतनी वक्त ही नहीं इतना, लेकिन आज जो है चप्पा चप्पा मालूम होगा कितनी क्या बेईमानी हो रही है, स्टूडेंट को सब मालूम होगा कहाँ क्या अच्छा हो रहा है ये नहीं मालूम, उसको सब मालूम है दुनिया में कहां क्या होता है किस तरह क्या करना चाहिए। अब ये कितना डिमोशन नहीं हुआ है, हाँ बड़े बड़े कॉलेजेस में जहां आज बड़े लोग बच्चे लोग बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वो तो फिर भी सतर्क हैं, पर छोटी मोटी जगह आप कॉलेज लाइफ के बारे में तो मेरे से दिन भर सुनते रहिएगा, दिन भर सुना दूंगा मैं तो उसमें कोई भी आज के इसमें और उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं था। जैसा मैं आज अपना बना के बिहेवियर है वैसा ही वहां भी, सबको मालूम, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ था मेरे आने से, उन्होंने कहा कि नहीं वो संभव था कि वो व्यक्ति तो जा सकता है, उनको किसी को भी नहीं, बस टीचर्स को थोड़ा सा हुआ था, तो बाद में आए एक स्टूडेंट को जो जैन नहीं था उसको बहुत आश्चर्य इस बात का हुआ था, बोलता कि हमने सुना है कि तुम अब एक ही बार खाना खाओगे पूरे जीवन भर, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो अपन नहीं सोच सकते, तो कहना हम आपसे कंफर्म करने आए, हमने वहां यूनिवर्सिटी में सुना कि आप अब एक ही बार खाना खाएंगे, हमने कहा हाँ, नहीं तो कितने दिन के लिए, हमने कहा कितने कितने नहीं जब तक जीवित रहेंगे, बोलते ओ वंडरफुल, ये तो बहुत आश्चर्यजनक चीज है, जैन नहीं था वो, और फिर कहता है कि और हमने ये भी सुना आप कंफर्म करिएगा आप अब कभी गाड़ी में नहीं बैठेंगे पैदल पैदल से नहीं कहीं भी जाना आपका कहीं भी जाने का मन हो पांव पांव से चलेंगे, हमने कहा पांव पांव से ही चलेंगे, अब बताइएगा ये चीजें हमारे यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे यहाँ कोई इनके बात तो कोई वो नहीं और कोई व्यक्ति इसका सुने तो उसको लगता है कि ये जीवन भर के लिए ये तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत साहस चाहिए, एक क्षण के अंदर आपने ऐसा निर्णय ले लिया कि आप बस जैसे आचार्य श्री ने जो है ज्ञान सागर जी महाराज कितने प्रसन्न हुए थे, आचार्य श्री बताते हैं, जब उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे तो बहुत ब्रह्मचारी आते हैं पढ़ लिख करके और छू हो जाते हैं चले जाते हैं, तो आचार्य श्री ने कहा कि ऐसा ना हो कि आचार्य ज्ञान सागर जी हमारे बारे में यही सोच रहे हो कि हम पढ़ पढ़ा के चले जाएंगे। तो उन्होंने मालूम घंटे भर में तुरंत जो है और कहा कि महाराज मैं अब जो है वाहन का त्याग करता हूं, जब आपके साथ ही पैदल ही चलूंगा, अब कहां जाएंगे भाग करके। तब फिर कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया था आचार्य श्री को, क्या हुआ तब फिर उनके मुंह से निकला कि विद्याधर देर से आए, देर कर दी, मतलब उनका बहुत बड़े ज्योतिषी थे वो ज्ञान सागर जी, तो उनको मालूम था कि अब मेरी उम्र बहुत थोड़ी रह गई और ये इतने दिन में मैं इसको पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, पर पूरे पांच बरस तक, पूरे पांच बरस आचार्य श्री को सब ग्रंथ, और बताते हैं आचार्य श्री की ज्ञान सागर जी महाराज बिना किताब लिए पढ़ाते थे। बस अब ये क्वेश्चन खत्म। आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की, ये कल के क्वेश्चंस थे कुछ। आचार्य श्री का उक्त कथन का आशय बताएं कि खंडन की नहीं मंडन की दृष्टि रखने से खंडन में भी मंडन ही नजर आता है। खंडन का मतलब होता है किसी भी बात का निराकरण करना, अपने यहां पर खंडन का मतलब दूसरे की बात को मिथ्या साबित कर देना, ऐसा नहीं है। सामान्यतः तो यही अर्थ लिया जाता है कि खंडन कर दिया मतलब हमारी बात को मिथ्या साबित कर दिया, नहीं। आपके आगम की चर्चा में कोई आपकी भूल हो गई और आपने उस चीज का अन्यथा प्ररूपण कर दिया, तो उसका निराकरण करने का नाम कहलाता है खंडन। जैसे कोई कहे कि भाई दो और दो पांच होते हैं, हैं? तो क्या करेंगे, ये निराकरण कर देंगे, उसको सिद्ध कर देंगे कि नहीं भाई दो और दो चार ही होते हैं, आपने जो कहा था। तो अब कोई कहे कि वाह हमने दो और दो पांच कही और आपने हमारी बात को खंडन कर दो, तो कहेंगे कि नहीं ये आपके, हमने चूंकि आपका उसमें दोष था तो हमने दोष निकाल दिया, निराकरण कर दिया। तो जब अगर हमारा उद्देश्य जो है किसी भी वस्तु स्वरूप को ठीक ठीक बताने का हो, तब हम किसी चीज में कोई गलती निकालते भी हैं तो उसका आशय क्या है, गलती निकालना नहीं है, उसका आशय तो उस चीज का पोषण करना है। जैसे कि कोई रोगी पहुंचा डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर क्या कहेगा, आपके लिए ये रोग हो गया है, रोग का निष्कासन करेगा, रोग के निष्कासन में तकलीफ हो सकती है उसको, पैर में घाव लगा उसको पहुंचेगा साफ करेगा तो उसमें तकलीफ होगी, लेकिन ठीक तो उसी से होगा। डॉक्टर का उद्देश्य क्या उस रोगी को और तकलीफ पहुंचाने का है या कि उसकी तकलीफ दूर करने का है, दूर करने का है। इसी तरह से जो है अगर हमारी दृष्टि मंडन करने की अर्थात अपनी वास्तविक बात को बताने की हो या वास्तविक बात के पोषण करने की हो या वस्तु स्वरूप के पोषण करने की हो, फिर हम अगर किसी दूसरी जो वस्तु स्वरूप से विपरीत बात है उस बात का निषेध करते हैं, तब फिर वो खंडन भी हमारे मंडन के लिए उपयोग में आता है। ये कहने का आशय है कि सही बात को स्थापित करने के लिए जब हम गलत बात का निराकरण करते हैं तो हमारा उद्देश्य अच्छा होने की वजह से वो जो हमने निराकरण या खंडन किया है वो भी काय के लिए किया, सही बात को स्थापित करने के लिए किया है। तो इस तरह ये इसमें उसका आशय ये लेना चाहिए।